गीत क्या था? गीत क्या था? सच्चे दिल वाले पर बाबा नाराजी है। तो विशेष आप सभी सपूत बच्चों को, खुशबूदार फूलों को, बाबा फीलिंग प्रूफ बच्चों को ओम शांति। तो विशेष रीति से प्यारे बाबा कि जब कमरे में जाते हैं, कुटिया में जाते हैं, तो याद रहता है आज बाबा ने मुझे कौन कौन सा बच्चा कहा। तो उस रूप में बाबा को ओम शांति करना चाहिए ना, कितना अच्छा लगेगा। तो विशेष रीति से आप सभी सेवाधारी के रूप में आए हैं, तो सच्चे दिल पर साहिब राजी है। आपकी जो दिल है यज्ञ और यज्ञ की सेवाओं के प्रति, तो सचमुच ये बहुत खुशी की बात है। आप अपने लिए ताली बजाइए। तो विशेष रीति से आज कुछ अनुभव जो योग के प्रयोग से है, और विशेष कल प्यारे बाबा ने मुरली में गुह्य राज बताया था। क्या था गुह्य राज? कि हाँ जी, यह व्यक्त ब्रह्मा भी अव्यक्त ब्रह्मा बनेगा, और आगे क्या था? हम सभी ब्राह्मण, जो क्या कहा था बाबा ने, हाँ जी, शब्द कौन सा था, क्या औलाद बाबा ने कहा, ये व्यक्त ब्राह्मण जो हम है, हम भी क्या बनने वाले हैं, अव्यक्त ब्रह्मा की औलाद बनेंगे। तो फिर बाबा ने स्पेशली ये बात बताई थी कि देखो, अव्यक्त बनने का पुरुषार्थ करो। तो पुरुषार्थ क्या करना है? बहुत इजी है। जैसे ही कल अव्यक्त लोक कहाँ बना है, कहाँ बना है अव्यक्त लोक, किस किस ने देखा अव्यक्त लोक? देखा शांति वन में है। अच्छा, उस अव्यक्त लोक में जब बैठे, तो फर्स्ट टाइम बैठे थे, तो इतना अच्छा लगा कि जैसे बाबा के साथ जितनी भी अव्यक्त मिलन की वो सीन कंटिन्यू, वो बाबा के साथ वो सारे मिलन, वो अनुभव अनुभूतियां फिर से आत्माओं को महसूस होने लगी। और वही बिल्कुल अव्यक्त बाप दादा मिलन का, वो खुद का भी अव्यक्त वाइब्रेशन खुद अनुभव करने लगे। बहुत अच्छा लगा। और देखा तो कितना इजी है, हम सब पता है क्या कर रहे हैं, हमारे सारे टीचर्स हमारा सारा सिलेबस कवर करके सब अपने ऊपर गए हैं, और हमें क्या करना है, अभी फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम सभी कर रहे, नहीं कर रहे है ना, वो टीचर नहीं होता है साथ में। फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन में क्या होता है, खुद ही खुद का टेस्ट करना, खुद ही खुद क्वेश्चन निकालना, प्रैक्टिस करना, ये सब करना होता है। तो मीठे बाबा ने हम सबके लिए एक इतने अच्छे, जैसे ब्रह्मा बाबा का शांति स्तंभ है, ऐसे ही हमारा जो अव्यक्त लोक बना है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पढ़ा है, किसी को याद है? हाँ जी, हाँ। तो सबसे सामने आ जाता है, क्या आ जाता है उसके ऊपर, स्वमान। स्वमान क्या कहता है? अव्यक्त होने के लिए बाबा ने हमें क्या बताया, मैं कौन और मेरा कौन। जब मैं कौन मेरा कौन होगा, तो स्वमान के नीचे क्या लिखा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। क्योंकि आज हम देखे याद और सेवा का बाबा ने कहा डबल लॉक लगा दो। तो वंडरफुल बात यही है कि ये जो सारे विघ्न जो आते हैं, वो एक बाबा और हमारे बीच में कोई तीसरा आता है ना, ग्रहण लग जाता है। और फिर हम देखते हैं कि स्वमान में रहेंगे, अलौकिक आत्मोभिमानी स्थिति में रहेंगे, तो सदा एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, चेक करना है। फिर अव्यक्त होने के लिए इसी के साथ साथ बहुत सुंदर जो हमें दिया है वो है समर्पण। लिखा है ना, समर्पण के नीचे क्या लिखा है? क्योंकि निश्चय होगा तो ही अर्पण होंगे, समरस होंगे, समर्पण होंगे। तो इसके अंदर नीचे क्या लिखा है, किसी को याद है? है याद किसी को? क्या लिखा है? बहुत सुंदर, जानकी दादी जी का, सच्चाई, सफाई और सादगी। तो सादगी ही हमारा सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। अव्यक्त होने के लिए श्रृंगार भी तो करना पड़ेगा ना, घर ऐसी थोड़ी जाएंगे, सजन या सज धज कर जाएगी, क्योंकि गुणों का श्रृंगार, शक्तियां जो है, यही तो हमारे फरिश्तों का ड्रेस है। और इसी के साथ हम सभी देखते हैं कि साक्षी ये ढाल है ड्रामा की, ड्रामा का नॉलेज, ड्रामा की ज्ञान, ये हमें साक्षी होने के लिए एक ढाल के रूप में काम करती है। ढाल को कुछ नहीं करना होता है, उससे किसी पे वार नहीं करना होता है, लेकिन जो सामने से हमारे अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, साक्षी क्यों नहीं होते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसे क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो ये साक्षी होने के लिए फिर बाबा कहते हूबहू ड्रामा रिपीट अगेन, नथिंग न्यू, तभी हम साक्षी हो सकते। अगर ड्रामा का नॉलेज हमें कंप्लीट, उसको हमने हजम नहीं किया है, तो ये ढाल काम नहीं करेगी, वार करेगी, ढाल काम नहीं करेगी। और इसीलिए साक्षी और नीचे बहुत सुंदर है लिखत, साक्षी होने से हमें क्या करना है, बहुत अव्यक्त होने के लिए बहुत जरूरी। बाबा तो कहते ना शरीर भी छूटे लेकिन क्या नहीं छूटे, हाँ तो क्या था, क्या लिखत है? हाँ, खुश रहना है, रहे खुश, सारा दिन खुश रहे, खुशी बाटी, खुशी बाटी। अच्छा, और नीचे क्या है? कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी ना जाए, कुछ भी जाए, बाबा तो कहते हैं ना, तो शरीर भी छूटे तो भी खुशी से। तो अव्यक्त होने के लिए पहले है स्वमान, दूसरा क्योंकि सीट बेल्ट है ना, वो नहीं होगा, सीट पर सेट नहीं होंगे, समर्पण अर्पण पूरा बाबा पे, उस सागर में समा जाएंगे, और साक्षी स्थिति, और लास्ट क्या लिखा है? दिव्यता। दिव्यता क्या है? दिव्यता है ना, ये बहुत काम करती है। जैसे प्रकाशमणि दादी जी कहते थे कि मम्मा का जो बुद्धि का पात्र है ना, वो बिल्कुल सोने का था, बिल्कुल सोने का। जैसे बाबा कहते हैं ना, शेरनी का दूध किस में रहेगा? सोने के बर्तन में। तो मम्मा का निरंतर ज्ञान का क्या चलता था? चिंतन चलता था। इसलिए उनका मनमना भव रहना या पुराने संस्कार, ये कभी भी उनको हावी नहीं हुए। अभी मन और बुद्धि और संस्कार, तो बुद्धि किस में है? मन और संस्कार के बीच में है। तो बाबा ने हम सभी को जन्म से ही क्या दिया? दिव्य बुद्धि दी, दिव्य दृष्टि दी। तो यहां पर हम देखते हैं कि पवित्रता जो है वह हमारे बुद्धि में क्या करती है? ज्ञान के चिंतन को लाती है। तो अभी आज विशेष रीति से, जैसे कल बाबा ने हमें पुरुषार्थ किया कि अव्यक्त होने का पुरुषार्थ करना है, तो अभी क्या करेंगे? अव्यक्त लोक का, जो अव्यक्त लोक में चले गए हैं उन्होंने क्या क्या किया है? स्वमान, समर्पण, तीसरा साक्षी, ये स्थिति है ना, साक्षी भाव हमारे अंदर होना चाहिए, और लास्ट दिव्यता। तो दिव्यता के नीचे क्या लिखा है, याद है किसी को? क्या लिखा हुआ है दिव्यता के नीचे? है ना, पवित्रता हमारी शक्ति है। बहुत सुंदर है, पवित्रता हमारी शक्ति है। बाबा ने कहा ना, ये आपको शुरू में क्या, योगी बनो और पवित्र बनो। तो बहुत सुंदर है कि अव्यक्त लोक, अव्यक्त लोक में जाने के लिए बाबा ने अव्यक्त लोक का हमारे नीचे हमें एक क्या किया, स्थान भी बना के दिया है। हमें कुछ करना नहीं है, बस प्रिपरेशन तो करना है, और वो कहाँ करना है, किसको करना है? जैसे आज मम्मा ने मुरली में कहा, क्या है? सेकंड का नॉलेज है। कितना नॉलेज है? सेकंड का। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्यारे बाबा की जो मुरली है, इस मुरली को कुछ सामने रखते हुए हम इन बातों को, जितने भी शांति स्तंभ बना है, नीचे अव्यक्त लोक बना है, प्रकाश स्तंभ बना है, शक्ति स्तंभ बना है, डायरी में नोट करो क्या लिखत लिखी है, वहां बैठ के मुझे क्या करना है, क्या अनुभव करना है, तभी उस स्थान पर बैठने का। देखिए ना कितना वंडरफुल है, मम्मा बाबा का क्लासरूम, जो नंबर वन लक्ष्मी नारायण है, उन्हीं के क्लासरूम में हम बैठे हैं। हम सब कहां बैठे हैं? उन्हीं के क्लासरूम में बैठे हैं। वंडरफुल है। आज तक किसी ने अपना बेडरूम शेयर किया होगा क्या? लेकिन बाबा की खटिया, बाबा का कमरा, बाबा ने बेहद विश्व के लिए शेयर कर दिया। आज तक हम किसी के घर भी जाएंगे, लेकिन किसी के बेडरूम में जा सकते हैं? नहीं। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा कितना बेहद है, जो वहां देखती हूँ ना सीन, तो सच्ची ऐसे लगता है वो बाबा का सामने है, पैड, बाबा का पेन, वो सब देख के ऐसे लगता है कि हर चीज बाबा ने अपने बच्चों के लिए, कुछ भी अपने लिए, और वो हमारा योग करवाता है, वो हमें पावन बनाता है, वो हर चीज हमें बाबा से बेहद में कनेक्ट कराती है। वंदर है ना, वंदर है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि वास्तव में आज हम दो बातें शेयर करेंगे आप सबके साथ, जो अनुभव के रूप में। तो जैसे हम ज्ञान में आए, तो बचपन से, जैसे ही कहते ना, बचपन में होश संभाला, तब से हमें याद है कि हम नींद खुली और हम भागते थे फूल लाने, है ना, क्योंकि मुझे भगवान को चढ़ाने हैं, कोई दूसरे ले जाएंगे तो मेरा स्नान आदि नहीं, वो बाद में, लेकिन पहले भागना है, फूल लेके आना है ना, इतना भक्ति का भाव था मन में। और जैसे जैसे बड़े होते गए तो और वो भक्ति बढ़ती गई, और यहाँ तक कि बस भगवान कैसे मिलेगा, बहुत सारा कुछ पढ़ा, कुछ किया, सारा कुछ किया, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जाह, बाबा ने आज भी कहा, भक्ति का फल भी कौन देता है? बाबा ही देता है। और सचमुच टर्निंग प्वाइंट पे भगवान ने हमें अपना बना लिया। उसके पहले बहुत फर्स्ट ईयर से ही वो ट्राई कर रहा था, लेकिन उसको हमारे लिए 6 साल वेट करना पड़ा, वो हमारी ही कम शायद, ये हमने नहीं पहचाना था। लेकिन जिस दिन से करीबन हम बहुत सारे 21 दिन उपवास करे, 16 सोमवार करे, और उसी दौरान में हमें परमात्मा का, बाबा का ज्ञान मिला, और सारे नियम धारणा कोर्स से पहले ही थे, सारे खाने पीने की सब की, वैसे तो बचपन से ही कहो और बाबा के ज्ञान में आने से ही एकदम। और जैसे ही 2-3 दिन का कोर्स हुआ, बस हमने उससे ही टाइम डिसाइड किया, कुछ नहीं, बस बाबा का ही हमें ये सब कुछ करना है। उसके बाद तो परीक्षाएं, तो धर्म संकट तो सभी को आते हैं, धर्म स्थापना करनी है तो उसमें संकट तो आने ही है, तो बस उसको भी बड़े खुशी खुशी से पार किया, जो बाबा से प्यार था, और वो भी सारा कोई वो बंधन में डालना, लॉक कर देना, वो मार पिटाई करना, कुछ भी बाबा का मिले कुछ नहीं लगा, लेकिन एक बाबा का प्यार जो था वो बहुत हमें महसूस कराता था। भले मुरली नहीं मिलती थी, लेकिन हम बैठ के बाबा को पूछते थे आज मुरली में क्या बताया, और सचमुच बाबा बता देता था कि बाबा ने आज मुरली में ये कहा है। और ऐसे धीरे धीरे वो सारे बंधनों से तो बाबा तो मुक्त करा ही देता है, जितना अपना योग बल बढ़ता जाता है। लेकिन ये अनुभव किया कि जहां बाबा से लव है, प्यार है, यहां वहां विघ्न भी हमें एक खेल लगते हैं, और ऐसे विघ्न डालने वाले भी बस एक ड्रामा के पार्टधारी ही लगते हैं, वो ये संबंधी है, ये ऐसे क्यों करते हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में कोई भाव नहीं आता है। और जब हमने देखा कि बाबा का वो समय भी आ गया जब सेंटर आना था, वो भी एक युद्ध चला, या तो घर में रहो, या तो, जैसे हमने एक हमारे आदरणीय हमें जो पालना दी है, हमारे वृषांता दादी जी का मैं अनुभव सुनाना चाहूंगी। आप सभी अनुभव सुनेंगे या अनुभव करेंगे? जैसे बाबा कहते सुनो सुनाओ पढ़ो पढ़ाओ, क्या करेंगे आप? सिर्फ सुनेंगे या अनुभव करेंगे, है ना? तो हमने जब दादी जी का अनुभव सुना था, ऐसे ही बंधन में थे, बहुत सोच चल रही थी, बाबा को कहती थी प्यार किया निभाना, ऐसे नहीं छोड़ना। फिर जैसे हमारी दादी जी का अनुभव सुनाया, दादी जी ऐसे कोई फंक्शन कोई प्रोग्राम था कहाँ पे, ब्रह्मा भोजन था, और हम बहुत ऐसे कुछ युक्ति रच के वहां गए थे, तो सिर्फ दादी जी का अनुभव सुना। दादी जी ने बताया हमें 17 तालों में बंद किया था, कितने, लेकिन हम वो ताले तोड़ के आ गए बाबा के पास। बस वो अनुभव सुनते ही मुझे लगा, अरे मुझे तो सिर्फ 2 ताले हैं, एक गेट का एक दरवाजे का, 2 ही तो ताले खोलने। बस 2 दिन के बाद हमने 2 ताले खोल तोड़ दिए और हम आ गए। ऐसे आ गए एक ही ड्रेस पे, पैर में जूती भी नहीं, कुछ नहीं, बस बाबा ने कुछ माना, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ बाबा, हाँ बाबा के दरवाजे तो कितने खुले होते हैं। कन्याएं आती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है पता है? बाबा को और दीदियों को, है ना, और सारे ब्राह्मणों को ही होती है। तो जैसे बच्चा जन्मता है तो सबसे ज्यादा खुशी माँ को होती है, वैसे हमारे बाबा को बड़ी खुशी होती है। तो विशेष रीति से ये मैंने अनुभव किया कि बड़ों के अनुभव को हम अपने जीवन में लाए तो वो भी हमारे लिए एक अनुभव बन जाता है। इसलिए पूछा अनुभव सुनेंगे या करेंगे, क्योंकि हमने सुना और किया। फिर दूसरी एक बात बताना चाहती हूँ, जो अनुभव सुना रहे हैं, ये योग के प्रयोग की जो भी सफलता है वो बाबा कराता है या हम कराते हैं? वो अनुभव कौन करता है, कराता है? बाबा। अनुभव कराने वाला बड़ा है ना, करण करावनहार। तो उसी भाव से सुनना कि ये सारा कुछ है ना, अनुमना आत्मा ये उस भाव को फील कर रही है और वो हमें करना है। तो बाबा की मुरली के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, तो बाबा की मुरली कितनी बेस्ट है, कितनी अच्छी होती है। तो जब हम सेंटर पे आए और 1-1.5 साल ही हुआ होगा, हमारे बड़े निमित्त दादी जी ने हमें एक सेंटर जहां अभी हम हैं उस सेंटर पे हमें भेजा, और 8 दिन के लिए भेजा, लेकिन अभी भी 8 दिन हो रहे हैं, तो 22 साल हो रहे हैं, फिर भी 8 दिन ही हो रहे हैं। तो उसके बाद जैसे हम 1.5 साल के अभी, और सेंटर निमित्त बनना, सेंटर चलाना, मैं सोचती थी बाबा आपने तो दादी दीदियों को 14 साल संभाला और हमें तो 1.5 साल में भेज रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कैसे। लेकिन फिर भी बड़ों को कभी ना नहीं करते थे, तो हमने सोचा कि चलो बाबा ने फेथ रखा, बड़ों ने फेथ रखा, विश्वास रखा, तो पात्र भी बाबा ही बनाएगा। कौन बनाएगा? बाबा ही बनाएगा पात्र। तो जैसे ही हम गए तो देखा 4th मंजिल पे सेंटर, वहां सीढ़ियों पे अंधेरा, भाई बहन कहते जब तक सेंटर नीचे नहीं आएगा हम नहीं आएंगे, छोटा सा एकदम। अच्छा फिर भाई डांस कहाँ करे, ज्ञान का, सेवाओं का, स्टेज भी नहीं है। अच्छा जिस स्थान पे गए वहां पानी भी नहीं है, अरे वंडरफुल सारा। मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा, आप जो है, हमने क्या कहा, आप जो है। और उसके बाद हम लगातार योग के प्रयोग की प्रयोगशाला में बैठ गए, धीरे 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 ये सारा सिलसिला। और जैसे मुरली में एक दिन था जो 4th मंजिल से हम नीचे तो आ गए, ग्राउंड फ्लोर पे एक बहुत अच्छा स्थान मिला, तो पानी की तो बहुत प्रॉब्लम थी। सेंटर पर कुमार भाई आए तो बस हम खिल जाते थे, भैया पानी लाके देना। वो कहां से, कभी माताओं के यहाँ कपड़े, कभी कैनल, इतना। और हम लोगों का सफाई तो कितना रहता है सब ब्राह्मणों को। और जब देखा एक दिन मुरली चली, बच्चे पानी के लिए भी पुरुषार्थ करना है, मुरली में पॉइंट क्या था, पानी के लिए भी पुरुषार्थ करना है। बस मुरली हो गई, मैं बाबा के सामने चेयर डाल के बैठ गई। बाबा पानी के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, जब तक नहीं बताओगे तब तक यहां से उठूंगी नहीं। बैठ गई, एक दो घंटा हो गया, वहां सामने एक पत्रिका पड़ी थी प्रगति पथ बोल के, उसको उठाया, देखा यहां से तो जवाब मिलेगा, बाबा ऊपर से तो नीचे नहीं आएगा। तो ऐसे ही दो तीन ऐसे, और जैसे पढ़ती गई, मैं आपको अनुभव सुनाना चाहूंगी। हमारी आदरणीय जानकी दादी जी बहुत बहुत, जैसे कहते हैं ना ज्ञान के सागर बाबा, वैसे दादी भी हर ज्ञान के, जैसे हर डिपार्टमेंट का ज्ञान कहो, हर एक आध्यात्मिकता का और हर एक व्यवहारिकता का ज्ञान दादी में, जैसे वो भंडार थी दादी हमारी। तो जैसे ही उस एक अनुभव पढ़ा कि उसमें था कि दादी जानकी जी कहीं सौराष्ट्र में गए थे, तो वहां की बहन ने पूछा दादी यहाँ की सेवा को बढ़ाने के लिए मैं क्या करूं। तो दादी जी ने, दादी जी को संख्या शास्त्र का नॉलेज था, ये हमें उस समय महसूस हुआ। तो दादी जी ने उस बहन को कहा 8 आवर्स माना 37 डेज डे नाइट भट्टी करना, कितना 37 डेज 8 आवर्स। और फिर दादी जी ने पूछा कि भंडारी के, भंडारी जो होती है ना बाबा की, तो यज्ञ में, तो दादी जी को वो बहन ने पूछा दादी आप कितना देती हो, दादी कहती जितना आती उसमें से आधी मधुबन। तो बहन ने कहा ठीक है हम भी ऐसे ही करेंगे। तो जैसे ही वो सारा पढ़ा, बस हमने दो तीन दिन में संकल्प किया कि हम भी यही करेंगे, पानी के लिए पुरुषार्थ करेंगे। तो जैसे ही प्लान बनाया, दिन में सब भाई बहनों का एक एक घंटे का शेड्यूल लगाया, रात में हम और कुछ बहनें, और लकीली थे कि कोई दो बहनें मेरे पास, अभी मैं तो इतनी छोटी थी, 4 साल हुआ होगा, और वो मेरे पास सीखने के लिए आई। मैंने कहा ठीक है बाबा मेरे पास सीखने के लिए आई है तो आप ही सिखा देंगे। तो जैसे उनका भी मुझे सहयोग मिला नाइट भट्टी में, तो ऐसे करते करते वो नाइट भट्टी संभालते 37 डेज का मेडिटेशन हुआ हमारा, बाबा का योग। जैसे आज बाबा ने कहा ना, स्नेह और शक्ति जहां है वहां सफलता है। तो जैसे ही आपको अनुभव सुनाते हैं कि हमने अमृत वेले 2 बजे शुरू किया था, तो 37 डेज 2 बजे अमृत वेले वो हमारा योग कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैं 6 बजे नीचे गई थी कुछ पार्किंग के, वहां देखा नीचे की 1,500 लीटर की टंकी, ऊपर की टंकी फुल भरी हुई थी। ना हमने किसी को बोला, ना हमें किसी को 1 रुपया दिया, ना किसी के पास अर्जी लेके गए थे, कुछ नहीं किया। नीचे पानी ऊपर पानी। और 2-3 दिन के बाद सेंटर पे एक रैली का आयोजन किया हुआ था, बस हम बहने डे नाइट सफाई पे लगे। हम 2 दिन सोए भी नहीं होंगे, इतनी सफाई की, इतने खुश हुए बस। और आज मैं आपको बता देती हूँ, उस सेंटर पे नीचे नल लगा है, लोग वहां से पानी लेके जाते हैं। दादी तो बजाओ है ना, वहां 1 नहीं 2 नहीं 3। अब ये तो हुई बात बाबा के, कि बच्चे पानी के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे ही बाबा की मुरली को हम कितना उठाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे ही हम एक गीता पाठशाला गए थे, और उस दिन मुरली में था बच्चे त्रिमूर्ति का राज सबको समझाओ। लोग त्रिमूर्ति लिखते, रोड लिखते हैं, त्रिमूर्ति नाम लिखते, लेकिन त्रिमूर्ति का राज पता नहीं, बस नशा चढ़ गया। वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ था त्रिमूर्ति डेवलपर्स, बस गाड़ी लगा दी ऊपर चली गई। मैंने कहा आपके मेन कौन है, तो उन्होंने कहा उनको 1.5 घंटा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं योग में बैठ गई वहां पे। जैसे वो आए अंदर गई, वो बुक तो सदा रहती थी साथ में शिविर वाली अपना, तो वो दिखा दी। मैंने कहा आपको पता है त्रिमूर्ति क्या है, बस मैंने अपना सुना दिया सारा त्रिमूर्ति का ज्ञान। और फिर उन्होंने मधुबन भी माना, जैसे उनको रोज बाबा की कुटिया में देखना शुरू किया, और जैसे ऐसे जैसे बाबा से टचिंग आ रही थी कि बच्चे ये बहुत स्नेही सहयोगी संबंधी आत्मा है। और जैसे ही फिर गुरुवार का भोग टोली और रोज अमृत वेले 4:45 बजे के बाद में 10 मिनट उनको बाबा की कुटिया में बाबा से उनसे रूढ़िहान करवाती थी कि बाबा ये बाबा आपका बच्चा है ना, बहुत स्नेही सहयोगी संबंधी आत्मा है, ऐसे करते करते। और देखा वो आत्मा मधुबन में आई, 2 बार ज्ञान सरोवर में आई, और फिर आज बाबा का जो घर बना उन्हीं के द्वारा, बाबा का बहुत बड़ा वहां घर बना। तो कहने का भाव है कि जो बाबा मुरली में कहता है, अगर उस मुरली के एक एक पॉइंट को हम सफल करें और उसको यूज करें, तो बाबा उसका पदम गुना करके हमें संगम पर ही दिखाता है। और जैसे बाबा के जब से हम बने तब से हम बाबा को पत्र लिखते हैं डेली, तो ये हम अनुभव देखे तो ब्रह्मा बाबा है। देखो बाबा कहते बाबा से हमारा बहुत प्यार होना चाहिए, लेकिन प्यार है तो वो जिक्र भी तो करना चाहिए ना। वो जैसे देखिए कई बार हम देखते बाबा मुरली में कहते ना ब्रह्मा बाबा, अरे शिव बाबा, तो बाबा वो फीलिंग कितना महसूस करा के बात करते हैं, मीठे बाबा आपने तो ऐसे ऐसे कितने सुंदर स्वीट बाबा के शब्द होते हैं, तो उसका इजहार तो होना चाहिए। प्यार है तो बाबा को वो बोलना तो चाहिए, उसके लिए करना भी तो चाहिए। सिर्फ रूखा सूखा प्यार कैसे चलेगा, माता ही चलेगा रूखा सूखा प्यार। बच्चे को कहो तुमसे बहुत प्यार है, होटल में जाके खा लेना, चलेगा क्या? तो प्यार है, प्रेम है, तो रोज बाबा को प्रेम प्यार से क्या करना चाहिए, खिलाना चाहिए, नया नया रेसिपी बना के खिलाना चाहिए, ताकि बाबा उंगली चाटता बैठे, है ना, इतना टेस्टी बनाओ, बाबा की याद में बनाओ। तो कहने का भाव यही है कि अगर हमें बाबा से प्यार है, देखो ये जून मास मम्मा का मास है, मास सरस्वती का, अभी जुलाई मास आएगा किसका, दीदी मनमोहिनी जी का, फिर अगस्त मास किसका आएगा, प्रकाशमणि दादी जी का आएगा। तो दीदी कहते थे बाबा को पत्र लिखे तो पहले क्या लिखना चाहिए, ऐसा हुआ घर में, ऐसा हुआ, फलाना हुआ, ये हुआ, नहीं। तो दादी कहती थी बाबा ने आज मुरली में क्या कहा, वो आपको कितना अच्छा लगा, आज बाबा का वरदान, तो आपको बाबा ने जो इतना बड़ा लव लेटर दिया है तो उसका क्या देना चाहिए। देखो आप व्हाट्सएप पे कुछ कुछ भेजते हैं तो वहां से कोई नमस्कार फूल या कुछ स्माइली आए तो आप क्या हो जाते हैं, हाँ रिस्पॉन्स मिला, ऐसे बाबा को कुछ तो रिस्पॉन्स देना चाहिए ना, या तो आंख से पानी वाला, या तो एंजल वाला, या स्माइल वाला, कुछ तो रिस्पॉन्स देना चाहिए। और बाबा ने तो कितना ब्यूटीफुल कहा बच्चे, ओके, है ना। तो जो है हम देखते हैं कि बाबा को मुरली से हमें ये बहुत सुंदर जवाब हमें मिलना चाहिए। तो जैसे ही हम 1.5 साल के सेंटर आए तो हम रोज बाबा को लेटर में लिखते थे, आज बाबा यहाँ ये वो, क्योंकि मेरे लिए दीदी दादी वही थे, माँ बाप सब कुछ वही थे, मैं किसको बोलूँ किसको पूछूँ, गलत हो रहा है, राइट हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन वो बाबा सचमुच बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देते थे। किसके पास जाऊँ, क्या करूँ, ऐसे कान में जैसे आवाज आती थी, हाँ जाओ उस मैनेजर से मिलो, उसको बोलो, ये करो, और रियली हो जाता था वो काम। तो ऐसे हम देखते हैं कि प्यारे बाबा के साथ जो हमारे योग का जो आता है ना, उसमें हम क्या कहते हैं, पहली विधि है बाप से रूढ़िहान करो। तो देखो सारे दिन में हम कितने परसेंटेज बाबा से रूढ़िहान करते हैं, और बाकी अव्यक्त बनना है, लेकिन व्यस्त और व्यक्त में कितने हैं चेक करो, व्यस्त और व्यक्त में कितने हैं, लेकिन हमें व्यस्त किस में रहना है, व्यस्त किस में रहना है, अच्छा उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, नहीं, व्यस्त किस में रहना है? बाबा ने ज्ञान, बाबा की सेवा, बाबा ने कितने सारे कार्य दिए हुए हमें, सभी ने जिम्मेदारी का ताज पहना है ना, पहना ही नहीं पहना है, पहना है, बहुत सुंदर। तो मधुबन में भी जब हम आते हैं तो विशेष रीति से ये ध्यान रखना है कि बाबा हमें, यहाँ सीसी कैमरे लगे हैं इस कैंपस में, लगे हुए हैं या नहीं? लगे हुए हैं ना। अच्छा, ये तो सीसी कैमरे यहाँ के, वतन में सीसी कैमरे लगे हैं या नहीं? अरे माँ बाप सीसी कैमरा ही होता है, माँ बाप माना क्या होता है? सीसी कैमरा ही होता है। बच्चा क्या कर रहा है, किधर गया, क्या खा रहा है, कहाँ उठा, कब तक उठेगा, है ना। तो ये हमारे जो बाबा मम्मा है, शिव बाबा है, ये सारे क्या है, कौन से कैमरे? अच्छा, जब सेवा करते हैं तो फील होता है बाबा खड़ा है मेरे पास, होता है? होता है। जितना लगन से करेंगे, एक्यूरेट करेंगे, टाइम पर करेंगे, उसके मार्क्स होंगे नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे, या काम चुकर? नहीं ना, नहीं नहीं, वो तो आप है ही नहीं, आप तो वो है ही नहीं, ठीक है। तो प्यारे बाबा ने ये बात बहुत अच्छे से बताई है कि अगर हमारा बाबा से प्यार है तो बाबा को पत्र सिर्फ मधुबन आने के बाद कुटिया में लेटर बॉक्स में डालने के लिए ही लिखना है या डेली लिखना है? जो कहते डेली लिखना है वो हाथ खड़ा करें, डेली लिखना है। अच्छा, डेली लिखना है ना, तो अपनी डायरी बना देना। क्या बना देना? डायरी। और जैसे दीदी कहते थे कि रोज मुरली का हमें दो लाइन तो बाबा को क्या देना है, रिस्पॉन्स देना है। अरे बाबा के साथ मस्ती नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे? अभी संगम युग में कितनी मौज, कितनी मस्ती बाबा के साथ करना है। तो विशेष रीति से कितनी सुंदर सुंदर बाबा के साथ की अनुभव है। तो मैं आप सभी को एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। बहुत साल पहले की बात है, अगस्त मास था, दादी जी का अव्यक्त हुए थे दादी, उसके बाद ही शायद नेक्स्ट साल में। तो ऐसे ही कुछ न कुछ क्रिएटिव करना चाहिए, तो हम लोगों ने, मैंने ऐसे सोच के, सारे बाबा के संबंध है, ऐसे 31-32 ऐसे संबंध निकाले। बाबा हमारा प्रियकर है, माँ है, जादूगर है, सौदागर है, बाप, टीचर और सदगुरु है। तो ऐसे सारे संबंध, और उसके साथ साथ दादी जी को भी दिन था, तो उसमें दादी जी को भी पत्र का था। तो इतना सुंदर अनुभव रहा उसका, जैसे वो सब एक जैसा पुरुषार्थ। और वो अनुभव करते करते मैं एक रियल उसमें से डेली जो अनुभव, जो संबंध था उसका अनुभव ब्यूटीफुल अनुभव होता था। जैसे बाबा दोस्त है तो वो अनुभव भी, कि जैसे नमाज शाम योग कर रहे थे और योग करते करते मैंने देखा मेरे बाजू में पीले रंग के इतने सुंदर फूल, पता नहीं किसी ने लाके रखे हुए थे। तो मैंने कहा ये तो बाबा आपने दोस्ती के फूल दिखाए मेरे को, कितना अच्छा है। ऐसे कई सारे संबंधों का। और फिर जिस दिन भोला भंडारी था बाबा, उस संबंध से उस दिन का अनुभव था। तो मैंने अमृत वेले योग करने के पश्चात निचाई इनवलप निकाला और मधुबन भंडारी के लिए और भंडारी डाल दी और वो टेबल पर रख दी। मैंने कहा बाबा आ जाओ भोला भंडारी, अपनी भंडारी ले जाओ। मैंने बाबा को बोला आ जाओ, देखती हूँ आप कैसे आते हो। और मना निश्चय तो पक्का। फिर उसके बाद मुरली क्लास, फिर कुछ हम लोग सेवाएं कर रहे थे, कुछ नए टोली बनाने के निकाला था। उतने में फोन आया अर्जेंटली कि मीटिंग है और आपको इस सेंटर पे आना है। और मुझे पता नहीं था कौन आ रहे मीटिंग में, मुझे लगा ऐसी कोई मीटिंग होगी। और उन्होंने कहा कि आपको भूल गए थे इसलिए आप आ जाना। हमने कहा ठीक है। आधे घंटे में रेडी होके चले गए। उस सेंटर पे हमारे राजू भाई आए थे, अभी बहुत खुश हुए। तो क्योंकि भोला भंडारी, अभी ज्ञान की भी कितनी सारी खजाना मिलेगा ना क्लास से। तो मीटिंग हुआ, भाई जी का क्लास हुआ, उसके बाद वो वरदान दे रहे थे, ब्लेसिंग दृष्टि दे रहे थे। तो मेरे मुख से भाई जी को कहा, भाई जी सेंटर पे आएंगे? उन्होंने कहा जी, हाँ जी बोला। अरे तुरंत हाजी बोला, कौन से सेंटर, किधर सेंटर है, मैं कौन हूँ, कुछ नहीं, हाजी बोल दिया। फिर उसके बाद बाजू में एक भाई थे, उनको पता था सेंटर हमारा, तो हमने कहा आप लेके आना, तो उन्होंने कहा ठीक। मैं तो भागी, राजू भाई आएंगे सेंटर पे, और हम लोग पेड़ा या कुछ बना रहे थे टोली सो, तो बस हम लोग वो की चाके आप मधुबन भी भेज सके, तो मैं थोड़ा जाके आगे गई, तो उनका फ्लाइट था शाम का कुछ, तो और भाई जी करीबन 3:30-4 बजे वो सीढ़ी चढ़ने लगे, बोलते बहन जी मैंने आपको हाँ कैसे बोला, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा भाई जी आपने हाँ नहीं बोला, ये तो बाबा ने हाँ बोला। तो उन्होंने बोला क्या बात है, तो मैंने आने के बाद मेरी डायरी दिखाई कि देखो रोज मैं बाबा को ऐसे ऐसे पत्र लिख रही हूँ, आज का संबंध भोला भंडारी का है, और मैंने ऐसे ऐसे भंडारी बाबा की निकाल के रखी, और मैंने कहा बाबा आ जाओ अपनी भंडारी लेने, तो राजू भाई निकाल लेके आ जाओ फिर। तो जैसे हम देखते हैं कि सचमुच बाबा जो है इतना अनुभव हमें कराता है, बस दूरी सिर्फ हमारे खुद को, मैंने कहा ना अनुभव सुनना नहीं, अनुभव हमें करना है, हर एक का संगम पर हमें अनुभव करना है। तो इसीलिए हम जितना हो सके, एक बात और बहुत ध्यान से है कि जितना हमें संगठन में भी रहना है, संगठन की महिमा तो अपनी है, संगठन शक्ति का साधन है, लेकिन अगर किसी कारण से हमें एकांत मिल जाता है, डरते हैं अकेले रहने में, अगर मान लो आपके कमरे में कोई सेवादारी नहीं है, आप अकेले हो तो चलेगा, या पड़ोस के कमरे वाले को बुलाएंगे आ जाओ, डर लगता है, किस किस को डर लगता है, अकेले डर लगता है, योग में तो अकेले ही बैठते हैं ना, घर भी कैसे जाएंगे, हाँ पक्का अकेले ही जाएंगे, अच्छा ओके। तो जितना एकांत मिलता है, जैसे हम दोनों बैठे हैं मान लो माताजी और मैं बैठी हूँ, और बाबा को मेरे से बात करनी है अकेले में, जब तक हम अलग नहीं होंगे बाबा मेरे से बात कैसे करेगा, है ना। इसीलिए जब भी हम योग में बैठे, या जब भी कभी हमें मौका मिल जाता है अकेले रहने का, बड़ा आनंद लेना उसका, क्या लेना, बड़ा आनंद। कभी कभी तो ऐसे लगता है इस बाबा के कमरे में बैठ जाएं, बाहर से कोई ताला लगा दे, अकेले बैठ जाएं, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। है ना, वंडरफुल है वो सारा बाबा का प्यार हमें, बाबा तो बेहद है, सागर है, वो कभी तो कम होगा भी नहीं, लेकिन ये एक मस्ती करने के बाबा के साथ का एक मजा ही अलग होता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमें सदा ही बाबा की मुरली और बाबा के लिए पत्र, पत्र ये क्या होता है, संबंध, अगर प्यार है हमारा बाबा से तो हमारा वो कांटेक्ट तो होना चाहिए, हमारी भाव भावनाएं जो है वो बाबा तक, और बाबा की जो मुरली से हमें आ रही है उसका रिस्पॉन्ड भी तो हमें देना चाहिए। और इसीलिए हम देखते हैं कि बाबा को लेटर लेटर लिखना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारा नेगेटिव व्यर्थ जो है टॉक्सिन्स, आजकल बॉडी के टॉक्सिन्स के ऊपर ज्यादा होता है ना, वैसे मन के टॉक्सिन्स कैसे निकलेंगे, लेटर लिखने से। तो बाबा एक उसकी आंसर उस लेटर का हमें मुरली में मिल ही जाता है, जितना आप मुरली को रोज ध्यान से सुनेंगे तो नई पॉइंट तो जरूर होती ही है। लेकिन अब एक पॉइंट याद रखें, जैसे खाली थाली और खाली कटोरी आज आपको सभी को पिकनिक में दी जाती तो मजा आता ना, बहुत मजा आता, गुलाब जामुन तो तो हम देखते हैं उसमें गुलाब जामुन, उसमें तंदूरी, उसमें पनीर सब था तो मजा आया ना, अच्छा। वैसे ही आप खाली दिमाग लेकर बाबा के पास सामने बैठेंगे तो योग में मजा आएगा, योग में मजा आएगा, आएगा आएगा, कोई विज्ञान की पॉइंट नहीं आएगा, नींद आएगी जरूर, हाँ है ना। इसीलिए एक छोटा सा प्रयोग करना, डायरी पेन साथ में रखना, पता है ना ब्रह्मा का दिन कैसे शुरू होता था, डायरी पेन से शुरू होता था। तो जब भी योग में बैठ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं बाबा के सामने, तो पहले आज की मुरली में या अव्यक्त मुरली जो भी आपने पढ़ी हो, क्या पॉइंट था वो लिखो। क्या करो, लिखो, देख के नहीं, मोबाइल से वगैरह। हाँ ठीक है, याद ही नहीं आ रहा है तो भले उसको सपोर्ट ले लो, लेकिन अपनी याद की यात्रा के लिए हमें ये सारी ज्ञान रत्नों की याद होनी चाहिए, क्योंकि ये ज्ञान ही उड़ने उड़ाने वाले हैं, ये हमें उमंग उत्साह देने वाले हैं। तो जैसे अभी हम सभी ने 24 तारीख मम्मा डे में कुछ लेटर बनाए थे बाबा के, और वो लेटर दिए थे, प्रिंट किए हुए थे, और कहा था कि सबको अपने लाल, बाबा पेन से लिखते थे ना बच्चों को पत्र, तो लाल पेन से लिखना। तो हम दूसरे दिन ही यहाँ आए, अचानक लॉटरी मिली मधुबन की, तो यहाँ आए, और फिर लाल पेन तो था नहीं, फिर हमने हमारे कमलेश भाई से लिया, और मैंने कहा, सब पत्र लिख रहे थे बाबा की कुटिया, मैंने कहा नहीं बाबा आज आप पत्र लिखना मेरे को, आज आप पत्र लिखना मेरे को। और जो प्रिंट मिला हुआ लेटर था मैं लेके आई थी, और वो लेटर मैंने लाल पेन से लिखा। मैं कह रही थी अंदर में ना खुशी के लड्डू फूट रहे थे मेरे अंदर, मैं सोचती थी साकार बाबा कैसे पत्र लिखते थे, अगर मुझे सिंधी आती थी ना मैं सिंधी में भी लिख देती थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं बाबा हाथ मेरे लिखना तू। तो जैसे मुरली, फिर वो पत्र बार बार पढ़ रही थी, बार बार पढ़ रही थी, और इतना अंदर ही अंदर जैसे वो बाबा का स्पेशली वाइब्रेशन जो होता है ना, वो वाइब्रेशन फील हो रहा था। तो ये हम देखते हैं कि हम बाबा के पास बैठे, इतना संगम का सुहावना अब सबको समय मिला है मधुबन में। कभी कभी पता है, मैं तो जीतू भाई को कहती हूँ हमें कोई भी सेवा दे दो हम आ जाएंगे। मधुबन जब आना होता है तो मैं रियली बताती हूँ, अगर अभी बड़े हो गए हैं लेकिन छोटे बच्चे की तरह अंदर में नाचना शुरू हो जाता है, क्योंकि देखो सारे सेंटर्स विश्व में कितने भी हो लेकिन सारे बाबा के बच्चे वहां पहुंचते हैं क्या, लेकिन मधुबन कैसा है, मधुबन कैसा है, बेहद का मधुबन है, ये अपना विश्व पिता का और अपना संगम का रियल घर है। तो आज कल भी नीचे जाए और आज भी ऊपर आने को मिले ना, उतनी खुशी होती है जैसे एक छोटे बच्चे की तरह। और रियली मैं बताती हूँ, सेंटर में मैं जितने भी आते हैं ना कहती हूँ आपको पता है मेरी गुड न्यूज क्या है, वो कहते क्या, मैं मधुबन जा रही हूँ, मैं मधुबन जा रही हूँ। वो कहते दीदी कितनी बार जाते हैं, हमने कहा फिर भी हमारा ना पेट नहीं भरता, मन भी नहीं भरता। तो माना ही मधुबन एक ऐसा है जो संगम का सबसे बेस्ट क्या है, क्या है, तीर्थ तो भक्ति वाले करते, ये क्या है, हमारा घर है, ये हमारा घर है। और जिसको इस घर की खुशी है ना, उसको उस घर में जाने की भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी, क्योंकि इस घर में जो बैठा है वही उस घर में भी बैठा है। तो इसीलिए हमें ये सदा याद रखना है कि बाबा की मुरली, मुरली के अंदर बाबा जो कहता है। कल आप सभी ट्राई करना, लेकिन आप कोई भी लाल पेन लेने नहीं जाना, अपना ले लेना, नहीं तो कोई भी पेन से लिखना, लेकिन ये लिखना कि आज बाबा मेरे को पत्र लिख रहा है, और आप लिखना शुरू कर देना। वंडरफुल, आप देखेंगे कि कितनी आत्मा के अंदर वो कशिश, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो आशिक माशूक, लैला मजनू, वो सब बन जाते हैं, है ना, वो बाबा का स्नेह प्यार एक चुंबक की तरह खींच लेता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि सबके साथ होते हुए भी हम एक बाबा दूसरा ना कोई, अव्यक्त बनने में मुश्किल मुश्किल नहीं है। और इसीलिए अभी अव्यक्त मास 5 मास के बाद आता है, जनवरी मास, अभी 1 मास तो हो गया खत्म, तो वो बहुत ध्यान से देखना कि बाबा को रोज क्या लिखना है, पत्र लिखना है। दूसरा, पत्र में क्या करना है, हाँ जी, मुरली, बाबा ने क्या बताया, मैंने क्या यूज किया, मुझे कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी धारणा को करने में मुझे प्रॉब्लम्स हो रही है। वो जब तक बाबा को नहीं बताएंगे तब तक बाबा को कैसे पता चलेगा, बाबा के इतने सारे बच्चे हैं। और इसीलिए पर्सनल कॉन्टेक्ट होना तो जरूरी है, हाय या ना। अच्छा, तो इसीलिए हम देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण है जो मधुबन की कुटिया में दो बॉक्स है, एक है मन की इकोनॉमी करने के लिए और दूसरा है स्थूल धन की कमाई करने के लिए, है ना। तो यज्ञ में जितना हम करेंगे तो हमारा मन यज्ञ से जुड़ा रहेगा, इसलिए बाबा को हर संबंध से जितना एकांत मिले और जितना हम खुश रहे और जितने भी अव्यक्त लोक बना है, प्रकाश स्तंभ बना है, शक्ति स्तंभ बना है, शांति स्तंभ बना है, उसकी सारी लिखत को बुद्धि में ऐड करेंगे। तो बहुत बहुत प्यारे बाप दादा को और आप सभी को गुड नाइट, शुक्रिया, ओम शांति।